के माध्यम से ये कार्य होने वाला नहीं है। सब कुछ आप लोगों को अनुभव हुआ लेकिन स्वयं का अनुभव नहीं हुआ, और स्वयं का अनुभव चाहता है आपके ये सारे सारे मौन हो जाए। सबसे ज्यादा मनुष्य वाचाल है, जब आवश्यक होता है तभी त्रियंच आदि को कुछ बोलते हैं, लेकिन वो शब्द नहीं बोलते, उनके संकेत अलग रहते हैं। लेकिन यह शब्द के द्वारा काम कम लेता है ये त्रियंच, और ये मनुष्य तो हमेशा शब्द 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 शब्द, ये ऐसा जब सो जाता तभी भी बड़बड़ाता रहता है। जागृत अवस्था में तो बड़बड़ाता रहता ही है, लेकिन जब सो जाता है तो उस समय उसका भीतर का क्या है वह सारा सारा उसमें आकाशवाणी में आ जाता, उसको भी टेप कर लेना चाहिए। कौन करेगा जब आपको होश हवास नहीं रहता, उस समय आप सुनाते रहते हैं, सुनने वाला सोचेगा इसकी माथा में और इसके भीतर क्या क्या भरा हुआ है। जो भरा है वही तो बाहर निकलता चला जाएगा, जो सुना है वही तो बाहर निकलता चला जाएगा, लेकिन आत्मानुभूति की बात कभी भी बड़बड़ाते हुए नहीं आए। एक गंधर्व परमेष्ठि सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं महावीर भगवान के वाणी सुनकर नहीं, सम्यक दर्शन ही नहीं सम्यक चारित्र को भी प्राप्त करते हैं। महावीर भगवान ने देशना नहीं दी, आगम का उल्लेख है 66 दिन तक नहीं हुआ, और जो ही इन्होंने उच्चारण छोड़ करके आचरण पर कदम रखे नहीं, महावीर कहते हैं आप इन सबको समझाओ, तुम्हारी बात ये समझ लेंगे। आप पहले क्यों नहीं ये पूछने की बात ही नहीं, कोई एक तो ग्राहक चालू हो जाए तैयार हो जाए। सब ग्राहक यहां पर बैठे हैं सामने, बिल्कुल जो ही बंद हो गया त्यों ही फड़फड़ाते हुए झाड़ते हुए यहां से निकल जाए। महावीर भगवान ने सोचा ये बनियाओं का क्षेत्र है, यहाँ बनिया बनकर के ही काम चलेगा, पहले बनो फिर बाद में देखेंगे। अच्छा हिसाब किताब निकाले, 66 दिन प्रतीक्षा तो बहुत हुआ था। दुकान में कोई ग्राहक नहीं आया तो देखना नहीं थी उन्होंने, हमारा माल बहुत अच्छा है, हमारा माल बहुत अच्छा अच्छा कहने के उपरांत भी क्या भाव है तो 10 रुपए है, 8 रुपए में नहीं दे सकते। ये अच्छा अच्छा कहने के उपरांत भी 10 कहेंगे तो 8, 8 कहेंगे तो 4, नहीं है तो 4 कहेंगे तो 1, और 1 कहेंगे तो मुफ्त नहीं दे सकते। हम इतने दूर से आए हैं, इतना तो कम से कम मिलना चाहिए कुछ कमीशन। ये बात हमेशा हमेशा कॉमर्शियल व्यावसायिक हो गया है। धार्मिक क्षेत्र में भी हम इसी तराजू से नापना तोलना प्रारंभ कर दिया। देशना के बिना भी ये हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, अब प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर महावीर भगवान के पास ये श्री गणेश करने वाले पहले घर में क्यों नहीं गए? क्योंकि त्रिशला और सिद्धार्थ की बात भी तो सुनी होगी। ऐसी कौन सी विशेषता आ गई महावीर यहाँ पर आने के उपरांत, तो उनके वजह से ये सब कुछ काम हुआ, पहले भी तो वही तो महावीर थे, महावीर तो महावीर ही है। गलत बात है, जो कुछ बोलते थे उस समय उनकी बोली में यह ओज और तेज नहीं था, जो आज बिना बोली भी काम हो गया, और ऐसा काम हो गया कि वह हमेशा हमेशा के लिए ही काम हो गया। हमें बताओ आप ये किसकी करामत है? महावीर की? महावीर तो पहले भी थे, ऐसा कौन सा धर्म आया? तो कहते हैं धम्मो सो जत्थ दया, धर्म तो वो है जहां पर दया है, जहां जहां महावीर है वहां वहां पर धर्म है, गलत बात है। जहां जहां पर दया है वहां वहां पर महावीर है, और यदि दया यहां पर नहीं है तो आज महावीर यहां कहां चले गए? विदेश चले गए। जहां दया समाप्त हो गई, जहां अदया आ गया, वहां पर वो विदेश चले गए। नहीं आएंगे महावीर इस धरती पर, इसलिए नहीं आएंगे, आप बुलाएंगे तो भी नहीं आएंगे। दया का जहां पर अस्तित्व होता है, धम्मो सो जत्थ दया इंद्रिय निग्रहो सोई जत्थ अति, जहां पर इंद्रिय का निग्रह है सोन तो वही तप है जहां पर इंद्रिय का निग्रह होता है। ये निश्चित हो गया, यह दया और इंद्रिय निग्रह और क्या वस्तु, यह भीतरी दया है। महावीर का धर्म चाहे भीतर देखो चाहे बाहर देखो, दोनों तरफ देखो, उसमें दया दया मिलेगी, 2x2 मिलेगी। 2x2 का मतलब क्या मालूम है आप लोगों की भाषा में, आप लोगों के उदाहरण से ही हम समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप समझेंगे 3x3 कह दे तो कुछ नहीं होगा। 2x2 का अर्थ क्या होता है, 1x1 होता होगा, इसलिए 2x2 भी होता है। कि जहां पर ताना बाना जो कुछ भी है वह सब एक ही दौर रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं रहता, जिसमें उलट पलट नहीं होता, जहां भी पलटा दो वहां सब समान रहता है, किधर से भी उसको सी सकते हैं, उसको किधर से भी ओढ़ सकते हैं, कुछ भी किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता। तो यह इंद्रिय का निग्रह सोवित हो, तप भी वह जो इंद्रिय का निग्रह होता है, इंद्रिय निग्रह करने से ही स्वदया पलती है और धम्मो जत सोई दया, जहां दया धर्म प्राणी मात्र के प्रति दया का अनुकंपा का होने से यह बाहरी दया है और भीतरी दया है, इस प्रकार होने से वो भगवान बने हैं। ओ अठ अठ दह दोष रही हो देवो सो जत संदेहो न थी कहते, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। 18 दोष से रहित हमारे महावीर भगवान बने तो कब बने, भीतर से इंद्रिय निग्रह कर लिया, स्वदया कर ले और बाहर से प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रखा, वध का हिंसा का त्याग कर दिया, ऐसे दया के कारण ही वे आज बने हैं। लेकिन बिना बोले भी उनका ऐसा आकर्षण है, उनका ऐसा प्रभाव है, उनकी ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से वह लोह तत्व खींचता आया, इस ढंग से खींचता आ गया कि वह लोह एक प्रकार से दुनिया में जो कोई भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए सामने आकर के बैठ गया और कहा, मैं आज तक जो कहता आया हूं उसको सब समाप्त कर दू। पहले इंद्रभूति था, अब आज गौतम गंधर बन गया, वही व्यक्ति है, वही अनादिकाल से जो स्वाभाविक शक्ति उसकी लुपी हुई थी वही है, कोई अंतर नहीं आया। अंतर यदि आया तो खाली हो गया, जो इधर उधर का दोष इकट्ठा हुआ था वह बाहर चला गया तो भीतरी वह स्वभाव उद्घाटित हो गया। दया के बिना यह संभव नहीं ही सिज्जंती वत्थ दरो अपि तीर्थ करा, तीर्थंकर भी क्यों न हो वस्त्र के धारक, वे कभी भी निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि दया वहां पर विद्यमान नहीं। आज दया के अभाव में ऐसा हो रहा है, आपको और क्या करनी चाहिए, आत्मा की उन्नति, देश की उन्नति, राष्ट्र की उन्नति, विश्व में शांति आप चाहते हो, दया को स्थापित करो और स्थापित करने के पहले स्वयं में पहले उसको उद्घाटित करो। कहीं बिक नहीं रही है बाजार में जाकर के हम 1,000, 2,000, 1,00,000, 2,00,000 बेच दें ताकि दया को ला करके रख दें। याद रखे, आप इस ढंग से करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, यह अवश्य है। उस वित्त का यदि उपयोग दूसरे कोई कष्ट में पड़ा हो उसको दे देंगे तो निश्चित रूप से वहां पर मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, वह भी धर्मनिष्ठ होगा और स्वयं भी वह धर्मनिष्ठ होगा। ऐसे महावीर भगवान के पवित्र इस जयंती दिन को आप मनाने जा रहे हैं, कुछ भीतर से कुछ भाव भी किए हैं क्या नहीं किए? अभी जो आपके सामने कहा गया, क्या कहा गया कि आज महावीर भगवान की आपने जयंती मना तो रहे हैं, लेकिन इस धरती पर आज ऐसे ऐसे संगी पंचेंद्री जीवों का वध होता जाता है, प्रतिदिन ऐसे कत्ल खाने खुले हुए हैं जिनमें लाखों की संख्या में यह वध होता रहता है पर सुनने में यह आता है मांस 5% भी यहाँ पर काम में नहीं आता, किंतु 95% मांस केवल बाहरी व्यक्तियों के लिए काम में जाता और निर्यात किया जाता है। सुनते हैं आज मनुष्यों के लिए इतने उड़ान भरने वाले विमानों की आवश्यकता नहीं जितने की मांस को निर्यात करने के लिए आवश्यकता पड़ गई है। जहाँ जहाँ पर बड़े बड़े जो अड्डे हैं वहाँ पर ये अंडरग्राउंड में ये कत्ल खाने खुले जाएंगे और वहाँ ऑटोमेटिक सब काम होता जाएगा एयर कंडीशन होते हुए, और वह कथा नहीं मांस आया नहीं डिब्बा भर करके वहीं के वहीं वह विमान उड़ेगा और विदेश तक उसका सप्लाई होता जाएगा। इस मांस के माध्यम से ये महावीर भगवान के धरती को सुरक्षित रखना आप चाह रहे हैं, इसमें उन्नति लाने का आप सबका संकल्प है, तो पहले यह संकल्प कर लीजिए यह हमारा संकल्प यह हमारा निर्णय बिल्कुल गलत है राष्ट्र के लिए भी और आत्मोत्थान के लिए भी। यदि धर्म को जीवित रखना चाहते हो तो पहले आपका कर्तव्य होता है ये मांस का व्यवसाय पहले बंद कर दीजिए। स्वस्य व्यवसाय क्या कहा था इस सूत्र में, सोन्मुखतया प्रतिभास माने स्वस्य व्यवसाय। आत्मा के प्रति उन्मुखता रखने वाला व्यक्ति या धर्म के प्रति बिल्कुल आस्थावान व्यक्ति कभी भी इस कार्य को स्वीकारता नहीं देख सकेगा, और यदि कोई स्वीकारता दे रहा है तो उसके प्रति ये कहता कि भाई साहब इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि इस प्रकार कभी भी उन्नति संभव नहीं है। लेकिन आज इस भारत में 90 करोड़ से भी ज्यादा आबादी का यह राष्ट्र है, लोकतंत्र माना जाता है, लगभग 50 वर्ष पूरे होने को है लेकिन फिर भी इसका विकास धड़ाधड़ कत्ल खाने खोलते हुए हो रहा है। और ये कहा कहते हुए हर्ष होता है इन लोगों को, देखो ऑटोमेटिक ऐसे यंत्र के निर्माण हो रहे हैं कि वो 5 मिनट के भीतर यह सारा का सारा काम कर जाता है। कितनी उन्नति की ओर भारत है, यह विकासशील राष्ट्रों में एक महान अग्रगणी है भारत, यह हर्ष का विषय है। ऐसे हाथ उठा उठा करके नेता लोग आपको सुनाते हाँ बिल्कुल जब से आप इस नेतृत्व को संभाले हैं जैसे आपका कार्यकाल प्रारंभ हुआ क्या कहें दिन दोगुनी और रात चौगुनी भारत उन्नति कर रहा, दिन दोगुनी और रात चौगुनी कितनी हुई 6 गुनी तो हो ही गई किस ओर जा रहा है, हानि की अपेक्षा से इधर कर्ज भी लिया जा रहा है, इधर इसके सिर पर बोझ भी होता जा रहा है, इधर योजनाओं के द्वारा ये कार्य भी होता जा रहा है और सारे सारे चैतन्य धन जो है उसका संहार भी होता चला जा रहा है। हमें समझ में नहीं आता हम कब ऐसे महावीर भगवान जैसे आदिनाथ भगवान जैसे कि नामों को लेकर के किसको हम समझाएं। जैन धर्म की ये विशेषता है, आत्म धर्म की ये विशेषता है, विश्व में यदि कोई धर्म है तो यही धर्म है, हम किस बलबूते पर कह सकते हैं। इतनी यहाँ पर हिंसा होती चली जा रही है। महावीर कहते हैं धम्मो सो जत्थ दया, जहाँ पर दया है वहाँ पर धर्म है, नहीं तो नाम लेने मात्र से धर्म नहीं हो सकता। इसलिए आप यदि महावीर भगवान की जय बोलते हैं तो हमारे कानों में कोई स्पंदन नहीं होता। हाँ ये लोग बहुत अच्छा है, धर्म की ओर आकृष्ट होते चले जा रहे हैं और उनके यहाँ दुकान तो वहाँ पर चल रहे हैं, वही काम करते चले जा रहे हैं और इधर जो है आए हैं उपस्थिति भी अच्छी है, इतनी भी आवान जंगल में भी और इतनी गर्मी में भी। देखो महाराज हम भी कुछ संयम रखते हैं, बिल्कुल संयम रखते हैं, क्यों नहीं रखते भैया, रख ही रहे, लेकिन संयम कई प्रकार से रखा जाता है। आप इतनी यदि गर्मी सहन करते हुए वहां पर जाकर के कहो ये हिंसा रुकना चाहिए, वहां पर जाकर के एयर कंडीशन में आप बंद हो जाते हैं, यहाँ पर हमारे सामने आकर कह देते हैं, फिर भी वह गुपचुप ये कह दिया जाता है भैया प्रबंध तो वैसे ठीक नहीं, यहाँ पर हम इतनी धूप में आए हैं कम से कम एक आध पंखा तो छत्रपति हमारे सिर पर घूम जाता, एक नहीं तो 10 के बीच में एक हो जाता, 100 के बीच में भी एक हो जाता तो भी हम मान लेते हैं। समझ में नहीं आता, ये बात है कि आप अपने आराम के लिए अपने सुख के लिए अपनी शांति के लिए अपनी सुविधा के लिए अपने को कष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन एक आज इस दिन भी जा करके कत्ल खाने में देखो वहां पर श्रेणी लगी हुई है, उनका नंबर लगा हुआ है, अब वह कत्ल की ओर जाने वाले, जिसके माध्यम से राष्ट्र की उन्नति होने वाली है और आप भी इसी आशा के भरोसे पर चल रहे हैं। भारत अब विकासशील राष्ट्रों में तो विकसित भी अवश्य होगा। इस प्रकार के विकसित हम भारत को नहीं चाहते। रक्त को बहा करके एक व्यक्ति बिल्कुल शहीद होता जा रहा है। देखो आज यहाँ कोई भी स्वतंत्र सेनानी है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट वह बिल्कुल वेतन देती रहती है और वह जब तक रहेगा तब तक, उसके पत्नी हो तो उस पत्नी के लिए भी मिलता जाएगा, यह प्रबंध है। लेकिन ऐसे राष्ट्र की उन्नति के लिए आज गाय भैंस बैल और भी जो शहीद होती चले जा रहे हैं उनके लिए कौन क्या देता जा रहा है? उनके माता पिता उनके लिए कोई वेतन है नहीं। तन जब आता बीच में चेतन होता मौन, और धन जब आता बीच में वतन सहज हो गौन। आज वतन मैंने राष्ट्र गौन है, केवल धन आना चाहिए, केवल धन आना चाहिए। गत रविवार के लिए हमने कहा था कि आपके पास प्राण कितने हैं? महाराज हमारे पास तो 10 प्राण हैं। सोच लो, विचार कर लो। हाँ महाराज 11 प्राण हैं। और सोच लो। नहीं आप सोचने कोई आवश्यकता नहीं, हमने सोच लिया। नहीं, 10 प्राण हैं ये शरीरगत आत्मगत, फिर इसके उपरांत अन्न जो है ये 11वां प्राण है। और अन्न ऐसे थोड़ी जाता, धन भी तो चाहिए, वह 12वां प्राण है। जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन, जैसे लावे धन वैसे होवे मन। ये क्यों नहीं कहा जाता, ये कहना तो चाहिए ना। क्या बस जब 11वां प्राण के बाद कोई नहीं होता तो बात अलग है। धन जैसे लाओगे वैसा ही भाव होगा निश्चित। और भारत में यदि उन गाय भैंस मार करके यदि धन आ भी रहा है, उस धन के द्वारा और मारने के ही भाव होंगे। इसलिए एक वर्ष में करोड़ों से भी ज्यादा ऐसे पशुओं का वध होता चला जा रहा है और बहुत कम राशि आ रही है। राशि के बारे में भी सोचते हैं तो बहुत लंबी चौड़ी राशि नहीं आ रही, केवल वह 3 अरब तक अभी आई है। अगले 10 दशकों में, मतलब 10 सालों में वह हो सकती है राशि 5 अरब तक पहुंच सकती है। 500 करोड़ केवल यह राशि दूसरे और कोई भी निर्यात के माध्यम से लाई जा सकती है। इससे 10 गुनी भी राशि आ सकती है। सारे व्यवसायी बैठे हैं, अध्यवसानी बैठे हैं, इस बात को सोच लेना चाहिए। यदि हिंसा को पूर्णतः आप समाप्त कर देंगे तो क्या राष्ट्र की उन्नति नहीं होगी? क्या वे पशु यहाँ पर जीवित रहेंगे तो बहुत खर्च होगा, खर्च ज्यादा न हो पर इसलिए हमने उनको समाप्त करने का प्रारंभ कर दिया। ऐसा है, ये ध्यान रखना, मनुष्य किसी काम का नहीं, लेकिन जब तक पशु रहता है तब तक भी काम करता रहता है और काम में आता जाता है और मरने के उपरांत भी वह दे करके चला जाता है। जैसा अवकाश प्राप्त होने के उपरांत क्या मिलने से पेंशन मिलने लग जाते है ना, उसी प्रकार पशु का ऐसा है और मनुष्य का तो ऐसा है ही नहीं। ये खर्चीला प्राणी है और वह केवल जमा जमा ही करने वाला। लेकिन आज जमानत ही बदल गई, ये जमाना ही बदल गया कि जो इस प्रकार के जीवन के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा। संगी पंचेंद्रिय ऐसे जीव है जो देश के लिए काम में आ रहे हैं, उनको समाप्त करना यह कभी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग यहाँ जैसे बैठे हैं, इससे चौगुनी यदि संख्या में जा करके अपने अपने मेन रोड पर जहाँ कहीं आपने दुकान लगी हुई है, वह जो आपके जो बोर्ड लगा हुआ है वहीं पर एक छोटा सा बोर्ड और भी लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है? मांस निर्यात बंद हो, ये भी लिखा जा सकता है। महाराज वहां पर दुकान, वहां कैसे नहीं, आपके नाम जब लगा हुआ है, दुकान का नाम भी लिखा हुआ है, उसके साथ ये भी लिखा जा सकता है, वहां पर भी अहिंसा का प्रचार किया जा सकता है और ग्राहक को भी कहा जा सकता है 1 रुपया कम दे दो लेकिन मांस निर्यात बंद हो, इसके बारे में प्रचार तुम भी करते जाओ। नहीं, हम 1 पाई नहीं छोड़ेंगे, भले ही 10 रुपया खर्च कर लें, लेकिन 1 पाई नहीं। ये गलत बात है आप यदि दूसरे को आकर्षित करना चाहते हो तो ये करो, आप व्यवसाय करो, लेकिन उस व्यवसाय के साथ साथ ये भी किया जा सकता है, ग्राहकों के माध्यम से बहुत काम हो सकता है। इस प्रकार से यदि किया जाएगा तो संभव नहीं, निश्चित हो सकता है कि यह मांस निर्यात बंद हो सकता है, इतने जीवों की हत्या बंद हो सकती है। इसके माध्यम से दयावा होने के कारण कि जहाँ हम बिना कहे ही धर्म का साक्षात प्रयोग देख सकेंगे, और इसी को बोलते हैं सक्रिय दया। धर्म ही हमेशा हमेशा हमारे लिए उन्नति की ओर ले जाने का परम साधन है। ऐसे साधन को बताने वाले आज के वीर भगवान हुए, उनको हमने नमस्कार किया। उनके पास कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है कि बहुत वो अच्छे हैं, हृष्ट पुष्ट हैं, उनको दुनिया देखती है इसलिए हम भी देखते हैं, ऐसा नहीं। उनको इसलिए हम नमस्कार करते हैं, उनके पास दया है, उनके पास किसी को कष्ट ना हो, इस प्रकार की भावना हमेशा हमेशा जीवित रहती है। ऐसे दया से पूर्ण करना के अवतार ऐसे जो भगवान महावीर हैं, उनकी वजह से जिनकी धारणा बनी थी कि इंद्रभूति जैसे बहुत दिन की, वो समाप्त हो गई और उन्होंने प्रवचन प्रारंभ कर दिया, और उन प्रवचनों के माध्यम से बड़े बड़े आचार्य हुए और बड़े बड़े धर्मात्मा हुए, और आज यह उनकी अनुपस्थिति में भी अहिंसा परमो धर्म के जय ऐसे जो नारे लग रहे हैं, कहीं न कहीं अहिंसा जीवित थी, अब आज नारों तक वह सीमित हो गई। इसलिए कि या नारे के बिना भी हम देखना चाहेंगे वह अहिंसा जीवित है क्या नहीं। हम कानों से अहिंसा को नहीं पहचानना चाहते हैं, क्योंकि कानों के माध्यम से तो शब्द ही पहचान में आते हैं, और जब शब्द पहचान में आते हैं तो यह सूत्र पुनः पुनः यही कहता है, शब्दानुच्चारणी थी अहिंसा धर्म की अनुभूति शब्दानुच्चारण के अभाव में भी हो सकती है, होती है। सही धर्म की पहचान वही है हम जीवित जो धन है उसकी रक्षा करें, उसके प्रति हमारा प्रेम वात्सल्य हो, उसके प्रति सहानुभूति हो, यदि कष्ट है उन कष्टों को दूर करने के लिए भी ये करो। इधर बड़े बड़े अस्पताल आप लोगों की कष्ट निवारण ही तो खुलते चले जा रहे हैं, और जिनके लिए कोई कष्ट नहीं उनको अस्पताल तो दूर की बात है, उनको पहले ही एक दो साल पहले ही समाप्त कर रहे हैं, फिर भी वो अपने आप समाप्त हो जाता तो फिर भी ठीक है, लेकिन समाप्त नहीं होते हुए भी तात्कालिक जिसको बोलते हैं कर्म उदीर्णा को प्राप्त नहीं हो रही है, तो तपा करके उसको तप के माध्यम से उदीरित किया जाता है, उसी प्रकार उसकी उम्र तो पूर्ण नहीं हुई लेकिन कत्ल खानों के माध्यम से उनकी अकाल मृत्यु कराई जा रही है। ये भीतर से कितनी तड़पते होंगे, इनकी आवाज मुख से शब्द से नहीं निकलते, उनके शब्दों के उच्चारण नहीं होते हुए भी उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास करना चाहिए। जो आत्मानुभूति की बात करने वालों को सर्वप्रथम उन भीतरी पीड़ा को भी पहचानने का प्रयास करना चाहिए। महावीर भगवान कहते हैं वह व्यक्ति अवश्य ही सहानुभूति का पात्र होगा, क्योंकि दया की पहचान जिसकी मुख जानवरों के ऊपर ऐसा अपने ही जीवन की उन्नति के लिए इतना पहाड़ टूट पड़ रहा है वो नहीं देखे नहीं समझे। और यहाँ पर कह दें अपने अपने कर्म से फल भोगे संसार, अपने अपने कर्म के सारे सारे फल भोगते हैं, ये निश्चय की बात है, बिल्कुल ठीक है, यही निश्चय की बात है। जब आपके ऊपर कहीं नंबर आ जाएगा तो उससे कह अपने अपने कर्म का फल भोगे संसार में, आप कतार में लगे हो जाओ। यदि पशुओं का वध पूर्ण हो गया तो क्रम कौन सा आएगा, फिर धीरे 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 बड़े सीमा नहीं आए तो जो गरीब के माध्यम से काम होने प्रारंभ हो जाएगा। इतिहास इस बात के साक्षी है कि नरमांस भी किसी काल में बिका है, और जब कलमी मनुष्यों की उत्पत्ति होने लग जाएगी तो यह भी काम होने लग जाएगा। कलमी वो इसी को नाम कलमी है, मतलब यही है कलमी के माध्यम से होगा कि कैसा होगा, इस ढंग से तैयार करेंगे, वो तैयार करते हुए चालू कर देंगे। उन्होंने यही लिखा इस प्रकार के जो उत्पत्ति होगी तो जानवर नहीं मिलेंगे, तो इस ढंग से बनाएंगे और नर हत्या होगी और नरयज्ञ होगा। ये ठीक लगेगा क्या? महान भयानक है ये। लेखक ने यह कहा था यदि यह कार्य प्रारंभ होता है तो यहाँ हाय हाय हो जाएगा। हाय हाय होने से पूर्व में ये सारे सारे कत्लखाने समाप्त हो जाए तो हाँ ये कहा जा सकता है कि आप शांति के साथ रह सकते, क्योंकि विज्ञान यदि दुरुपयोग का प्रारंभ कर देता कोई कार्य तो फिर वहाँ कोई बचने की बात नहीं होती, क्योंकि वह पक्षपाती नहीं है जिस विज्ञान के सामने। कोई भी नंबर आ सकता, कभी भी आ सकता, किसी का भी आ सकता है और कितनी भी मात्रा में आ सकता है। और ऐसे ऐसे आत्मिक शक्तियों का निर्माण हो चुका है कि 10 मिनट की देरी से कहां पर क्या है वह आदिम युग यहां पर आ सकता है, जिसको पाषाण युग बोलते हैं। सब यही कहीं धरा रह जाएगा। महावीर भगवान की बात सुन रहे हो, महावीर भगवान की बात पढ़ रहे हो, महावीर भगवान को पहचान करना चाहते हो तो ऐसे चित्रों में, केवल बिंबों में नहीं, किंतु उसके साथ साथ दया धर्म के माध्यम से ही उनको पहचाना जा सकता है। ऐसे महावीर भगवान के बिंब देख करके हमें वातावरण बनाना चाहिए। प्रसन्न मुद्रा में वह स्वयं रहते हैं और दूसरे को भी प्रसन्नता का वो पाठ हमेशा हमेशा बिना बोले देते हैं। आपको आज से ये प्रारंभ करना है कि जीवित अहिंसा, सक्रिय अहिंसा, जो बोल नहीं रही है लेकिन जीवन उसमें है, यह पहचान में आ जाएगी। जिसके द्वारा शांति, जिसके द्वारा करुणा का पाठ अपने आप देख करके ही हम कर सकते हैं। देखने के लिए आंखों की आवश्यकता है, आंखों को आवश्यकता है, लेकिन आंखों के ऊपर जो मोह का पर्दा है उसको निकालने की आवश्यकता। वो कब पर्दा होता है? जब आता बीच में धन, तब तो वतन हो जाता है गौ, और जब आता बीच में तन, तब चेतन होता है मौन। चेतन मौन हो जाता है तो चेतना के बारे में कोई चिंता नहीं, विकल्प नहीं। महावीर कहते हैं युग व्यतीत हो चुका है, महावीर अब जीवित नहीं है, पार्थिव रूप से भी और दया धर्म के रूप की अपेक्षा। महावीर ने ठेका नहीं लिया था जो दया धर्म आपके लिए भी कहा है। यदि महावीर बनना चाहते हो तो दया धर्म का पालन करो, और ऊपर ऊपर से नहीं, और समय मिल गया इसलिए नहीं, समय निकाल करके सर्वप्रथम उसी के लिए समय निकाल देना चाहिए। जैसे आप लोग जल्दी जल्दी दुकान खोलना चाहते हैं दिनों से, उसी प्रकार धर्म की दुकान पहले खोल लेना चाहिए और अच्छा माल उसी में लगा लेना चाहिए, अच्छा उत्साह उसी में लगा लेना चाहिए, फिर बाद में धन के लिए बाद में 11 बजे भी जा सकते हैं। वैसे गवर्नमेंट का कानून भी होता चला जा रहा है कि कुछ देर से ही आप करो, क्योंकि कर्मचारी भी रहते हैं, उनको जल्दी जल्दी मत बुलाए करो। फिर भी कर्मचारी को कह देते देखो आप दुकान में या काम करना है तो जल्दी आना पड़ेगा, गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट को हम पहले फिर बाद में गवर्नमेंट। चल रहा है ऐसे कि ड्यूटी वह 10 घंटे भी के ली जा सकती है और उसको भी देना ही पड़ता है, क्योंकि आपको बहुत 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 चाहिए। क्या चाहिए? धर्म नहीं, धन चाहिए। महाराज धन के बिना धर्म कहाँ होता? आप इतने बता रहे हैं कि भैया निर्यात बंद होना चाहिए, मांस निर्यात बंद होना चाहिए। जब हम धन खर्च करते महाराज तब ये प्रचार प्रसार होता है, ठीक है। इसमें भी क्या व्यवसाय करना चाह रहे हो क्या? इस माध्यम से भी क्या व्यवसाय करना चाहते हो? व्यवसाय नहीं करना, किंतु उस जनाना है उस धर्म को जो महावीर भगवान की परंपरा आज तक है, उन्हीं की हम परंपरा को निभाने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा करते चले जाओ तो आगे की भी जो परंपरा आने वाली वह अक्षुण्ण रूप से जुड़ेगी। धर्म की परंपरा हुआ करती है, यदि अनास्था की भी परंपरा होती है, रूढ़ की भी कोई परंपरा होती है, तो धर्म की भी परंपरा होती है। और परंपरा की उस गाड़ी को ये चलाने के लिए, उस पहियों को चलाने के लिए ऐसे अपने आप वह नहीं चल सकती, वह धन के माध्यम से नहीं चल सकते, किंतु वह चल सकती है दयामय धर्म के माध्यम से। ऐसे सक्रिय दया धर्म जो महावीर भगवान के पास था, इसलिए मौन भी उनका उपदेश वह विपरीत वृत्ति वाले के ऊपर भी प्रभाव पड़ा और देव दानव सारे एकत्रित होकर के उनकी जयकार जय जयकार किए। महावीर भगवान नहीं चाहते थे जय जयकार, किंतु फिर भी यह आवश्यक था, हम लोगों का कर्तव्य था कि उनकी जय जयकार करने से ही वस्तुतः एक महान आदर्श व्यक्ति सामने रहता है तो निश्चित रूप अहिंसा परमो धर्म
आचार्य विद्यासागर महाराज पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज की कैसेट